ਤੇ ਵਾਸੁਦੇਵਾਯ ਓਂ ਨਮੋ ਭਗਵਤੇ ਵਾਸੁਦੇਵਾਯ ਓਂ ਨਮੋ ਭਗਵਤੇ ਵਾਸੁਦੇਵਾਯ ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯಂ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯೋ ಮುದೀರಯೇ ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷು ಅಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯಾ ಭಗವತೇ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೇ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಠಿಕೀ ನಮಃ ಪಂಕಜನಾಭಾಯ ನಮಃ ಪಂಕಜಮಾಲಿನೇ ನಮಃ ಪಂಕಜನೇತ್ರಾಯ ನಮಸ್ತೆ ಪಂಕಜಾಂಗ್ರೇ ಮುಖಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಪಂಗುಂ ಲಂಗ್ರಯತೆ ಗಿರಿಂ ಯತ್ಕೃಪಾತಮಹಂ ವಂದೇ ಶ್ರೀಗುರು ದೀನತಾರಿಣಂ ಪರಮಾನಂದ ಮಾಧವಂ ಶ್ರೀಚೈತನ್ಯೈಶ್ವರಂ
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಸ್ ಪ್ರಾತಃಕಾಲೀನ ಭಗವತ್ ಕಕ್ಷಾ ಮೇ ಹಮ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಭಾಗವತ್ ಕಾ ಪಾಠ ಕರ್ತೇ. ಆಜ್ ಪಂಚಮ ಸ್ಕಂದ ಸೇ 20 अध्याय और श्लोक क्रमांक है 17. ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಪರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಜಾತವೇದ ಅಸಿ ಹವ್ಯವಾನ್ ದೇವಾನಾಂ ಪುರುಷಂಗಾನಾಂ ಯಜ್ಞೇನ ಪುರುಷಂ ಯಜ್ಞ ಇತಿ. ಪರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಜಾತವೇದ ಅಸಿ ಹವ್ಯವಾನ್ ದೇವಾನಾಂ ಪುರುಷಂಗಾನಾಂ ಯಜ್ಞೇನ ಪುರುಷಂ ಯಜೇತಿ. ಪರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವೇದೋಪಿ ಹವ್ಯವಾಟ್ ದೇವಾನಾಂ ಪುರುಷಂಗಾನಾಂ ಯಜ್ಞೇನ ಪುರುಷಂ ಯಜೇತಿ. ಪರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವೇದೋಪಿ ಹವ್ಯವಾಟ್ ದೇವಾನಾಂ ಪುರುಷಂಗಾನಾಂ ಯಜ್ಞೇನ ಪುರುಷಂ ಯಜೇತಿ. ಕೃಪಯಾ ದೋಹರಾಯ್ಯ. माताजी शब्दार्थ परस्य परमेश्वर की ब्रह्मणा ब्रह्म का साक्षात प्रकट रूप में साक्षात जातवेदः हे अग्निदेव असी आप है हव्यवाट अन्न तथा घृत की आहुति के वाहक देवानाम समस्त देवताओं के पुरुष अंगानाम जो परम पुरुष के अंग है यज्ञेना यज्ञों के द्वारा पुरुषम परम पुरुष को यजा यज्ञ करो इति इस प्रकार अनुवाद और तात्पर्य इस भक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद यह वो मंत्र है जिसके द्वारा कुशद्वीप के वासी अग्निदेव की पूजा करते हैं। हे अग्निदेव आप श्री भगवान के अंश रूप हैं और उन तक समस्त हवियों को पहुंचाते हैं। अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम देवताओं को जो भी यज्ञ सामग्री अर्पण कर रहे हैं उसे आप श्री भगवान को अर्पित करें क्योंकि वे ही असली भोक्ता है। अनुवाद बोलिए यह वो मंत्र है जिसके द्वारा कुशद्वीप के वासी अग्निदेव की पूजा करते हैं। हे अग्निदेव आप श्री भगवान के अंश रूप हैं और उन तक समस्त हवियों को पहुंचाते हैं। अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम देवताओं को जो भी यज्ञ सामग्री अर्पण कर रहे हैं उसे आप श्री भगवान को अर्पित करें क्योंकि वही असली भोक्ता है। तात्पर्य समस्त देवता श्री भगवान के सेवक हैं, अतः यदि कोई व्यक्ति देवताओं की उपासना करता है तो वे देवता परमेश्वर के सेवकों की भांति उन तक समस्त हवियों को पहुंचाते हैं। जिस प्रकार कर संग्राहक नागरिकों से कर वसूल कर सरकारी कोष में पहुंचाते हैं, देवता इन हवियों को स्वीकार नहीं कर सकते, वे उन्हें श्री भगवान तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। जैसा कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, क्योंकि गुरु श्री भगवान का प्रतिनिधि होता है अतः उसे जो भी अर्पित किया जाता है उसे वह ईश्वर तक पहुंचाता है। उसी प्रकार से समस्त देवतागण श्री भगवान के आज्ञाकारी सेवकों की भांति समस्त हवियों को उन तक पहुंचाते हैं। यदि यह समझकर देवताओं की उपासना की जाए तो कोई हानि नहीं है, किंतु यदि कोई वह यह सोचे कि देवता श्री भगवान के तुल्य हैं, तो इसे हम हृतक ज्ञान अर्थात ज्ञान की हानि कामस्तरते हृतक ज्ञान कहेंगे। अतः जो देवताओं को वास्तविक वर देने वाला समझते हैं वे त्रुटि करते हैं। ओम अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणा ललिता श्री विशाखान्विता। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो
दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम हम मंदिर के अध्यक्ष और वरिष्ठ वैष्णव देवकीनंदन प्रभु असीम प्रभु सबसे आशीर्वाद और सारे वैष्णव से आशीर्वाद मुकुंद माधव प्रभु हमें आशीर्वाद प्रदान करें, क्योंकि भागवतम जैसा पवित्र विषय और अमल पुराण परंतु एक मौका मेरे शुद्धिकरण के लिए दिया गया है। तो जो भी आप में से सब में छोटा हूं परंतु एक सेवा दी गई उसे मैं करने का प्रयास करूंगा। हरे कृष्णा। तो इस 20वें अध्याय का नाम है ब्रह्मांड रचना का विश्लेषण। तो छठवें श्लोक से बाद केवल अनुवाद है श्लोकों का 15वें श्लोक तक 16वें श्लोक तक। तो इन अध्याय में जो द्वीपों का वर्णन किया जा रहा है 7 द्वीपों में अलग अलग प्रियव्रत महाराज के पुत्रों को इन 7 द्वीपों को विभाजित कर दिया गया और वहां पर के नाना जो पर्वत है 7 हर एक द्वीपों में एक एक पर्वत नदियां इनका नाम गिना गया। तो समय न होने के कारण ज्यादा तो हम केवल श्लोक पर ही चर्चा करेंगे। तो यहां पर कुश द्वीप का वर्णन चल रहा है और कुश द्वीप के जो देवता है वो है अग्निदेव। और अग्निदेव यहां पर वहां के वासी अग्निदेव को जो प्रमुख देवता कुशद्वीप का है वो अग्निदेव है उसे वहां के वासी प्रार्थना कर रहे हैं कि आप इन सारी हवियों को आप भगवान तक पहुंचाइए। और राष्ट्र में कहते कि क्योंकि भगवान ही स्वयं भोक्ता है। तो भगवत गीता के अनुसार देवता भगवान 7वें अध्याय के 20 श्लोक से लेकर 23वें श्लोक तक इन 4 श्लोकों में देवता वास्तव में कौन है इसका स्पष्टीकरण भगवान 4 श्लोकों में देते हैं। तो जो देवताओं के पूजक होते हैं तो यहां पर प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो यहां के वासी हैं देवताओं के द्वारा मतलब अग्निदेव के द्वारा भगवान तक यज्ञ हवियों को पहुंचाया जा रहा है। तो प्रभुपाद कहते हैं ये विधि सही है कि उन लोगों को यह पता है कि परम पुरुषोत्तम भगवान भोक्ता कृष्ण है तो उन तक उन वही भोक्ता है सारे यज्ञ सामग्रियों का और हवियों का तो उन्हें पता है। तो लेकिन वो डायरेक्ट भगवान को अर्पित न करते हुए उनके प्रतिनिधि के रूप में यज्ञ की सामग्रियों को अर्पित किया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग अज्ञानी लोग यहां पर हुतक ज्ञाना शब्द के बारे में जोर दिया गया है प्रभुपाद ने तात्पर्य अर्थात जो अज्ञानी है। तो वेदों में संस्तुति है कि आपको विभिन्न भौतिक इच्छाओं की कामनाओं के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा अर्चना या यज्ञ करना चाहिए। जिस प्रकार यदि आपको सुंदर पत्नी की कामना है तो उमा अर्थात पार्वती की उपासना करो। आपको विद्या की कामना है तो सरस्वती की पूजा अर्चना करो। यदि धन की कामना है तो लक्ष्मी कुबेर। तो इस ब्रह्मांड की रचना में भगवान को इतना सुंदर संपूर्ण मैनेजमेंट यूनिवर्सल व्यवस्थापन चलाने के लिए विभिन्न देवताओं को नियुक्त किया जाता है। तो इन विभिन्न देवताओं के पास जो भी कुछ शक्ति प्रदान होती है वो स्वयं भगवान के द्वारा होती है। भगवान गीता में 7वें अध्याय में कहते हैं कि देवताओं के पास जो भी शक्ति आती है वो स्वयं उनकी नहीं है। जब कोई जीवात्मा विभिन्न भौतिक कामनाओं को लेकर किसी देवताओं की पूजा अर्चना करता है तो देवताओं से मेरी अनुमति के बिना नहीं प्रदान कर सकते। तो मतलब जो भी कोई भगवान देवता जैसे चंद्र, इंद्र, वरुण, सूर्य, शिवजी, इन सबकी उपासना करने का अनुष्ठान करता है तो देवता भले ही कितना देना चाहे तब तक नहीं दे सकते जब तक भगवान उनको ना दे। तो इधर रूपा ने एक उदाहरण दिया है कर संग्राहक। जिस प्रकार भारतीय गवर्नमेंट सरकार किसी विशेष राज्य के लिए आपा जो कर लेती है तो वो कर नियुक्त कर लेने के लिए कुछ अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं तो वो कर लेकर अपने जेब में नहीं डालते हैं। आज की बात छोड़िए क्योंकि आज ज्यादातर कर लेते हैं अपने जेब में जाता जाता है जिसे भ्रष्टाचार कहा जाता है। तो आज इतने प्रामाणिक शासक या उनके अधीनस्थ अधिवर्ग नहीं है। तो प्रभुपाद कहते हैं जैसे कर उस राजा की प्रणाली में होता था जो भी राज्य से या राजवासियों से कर लिया जाता था वो राजकोष में जमा होता था जिसके अंतर्गत राजा संपूर्ण प्रजा का व्यवस्थापन उनकी जो आवश्यक चीजें उसे प्रदान करता था। तो उसी प्रकार देवता भी जब कोई विशेष व्यक्ति उनकी पूजा अर्चना करता है तो वो देवताओं के पास नहीं तो देवता उसे लेकर भगवान के पास पहुंचाते हैं क्योंकि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम श्रुतम सर्वभूतानाम ज्ञाता भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम श्रुतम सर्वभूतानाम ज्ञातामाम शांति मृच्छति। तो सारे यज्ञ अनुष्ठान इसलिए किए जाते हैं कि संसार में शांति सुख संपन्नता प्रदान हो। तो भगवान स्वयं भगवद्गीता के छठे अध्याय में अंतिम श्लोक में यही कहते हैं कि भोक्ता स्वयं मैं हूं। और प्रभुपाद भी बोलते हैं कि क्योंकि असली भोक्ता भगवान है। तो प्रभुपाद भगवद्गीता के तात्पर्य में कोई कह सकता है कि देवता लोग तो भगवान के अंश है, भगवान के अंग है, तो किसी भी अंगों को यदि हम कुछ देते तो भगवान तक ही जाता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं मूर्खता है। सातवें अध्याय के 22-23 श्लोक में बोलते हैं ये मूर्खता है। तात्पर्य में कि शरीर के विभिन्न अंग है, कोई व्यक्ति चाहे कि शरीर के विभिन्न अंगों को भोजन लगता है तो कोई कान को, नाक को, चपाती, लड्डू सब बांध देगा तो वास्तव में संतुष्ट नहीं होगा। तो इस संपूर्ण शरीर का वास्तविक भोक्ता या संतुष्टि का जो कारण है वो पेट है। यदि पेट को संपूर्ण अन्न दिया जाए तो सारी इंद्रियों को जा सकता है। उसी प्रकार यदि हर अनुष्ठान, हर यज्ञ सामग्री भगवान के द्वारा अर्पित की जाए और भगवान को भोक्ता मानकर समर्पित की जाए तो हर कोई संतुष्ट रह सकता है। दूसरा भी उदाहरण, जड़ के पेड़ के जड़ को पानी देने से सारी शाखाएं पत्ते पल्लवित हो जाते हैं। कोई विशेष कहेगा कि इतने सारे पत्ते तो मैं सब पत्तों को पानी देता हूं तो ये वो उसकी अज्ञानता। इसलिए हृतज्ञाना शब्द का प्रयोग किया गया है कि जिनको जो अज्ञानी होते हैं कामस्तस्य हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्न देवता। तो ये लोग जो अज्ञानी अज्ञानता के कारण, तो प्रपद और तात्पर्य में लिखते कि अज्ञानता इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि तीन गुणों के अंतर्गत तीन प्रकार के आराधना करने वाले होते हैं, पूजक होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तो जो रजोगुणी और तमोगुणी होते हैं वो इस प्रकार के हृतज्ञाना होते हैं क्योंकि रजोगुण और तमोगुण में ज्ञान नहीं होता है। रजोगुण महत्वाकांक्षाओं से बांधता है और जो तमोगुण होता है वो अज्ञान, प्रमाद, आलस्य से बांधता है। वास्तव में जो सतोगुणी होते हैं वो जानते हैं यज्ञ का अनुष्ठान का वास्तविक उद्देश्य और वो सतोगुणी व्यक्ति होते हैं भक्त। तो इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य के कुछ नीचे और लाइनों में कहते हैं, जिस प्रकार विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं तो भक्त जो होते हैं उसमें उदाहरण दिया कि यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। तो भक्ति मार्ग में भी डायरेक्ट भगवान को कोई प्रसन्न नहीं कर सकता है। तो भक्ति मार्ग में भी प्रसन्न करने का भगवान को तरीका यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। जब तक हम गुरु के द्वारा गुरु को अर्पित नहीं करते, और ये नहीं कहा कि गुरु स्वयं लेता है, गुरु भी एक प्रतिनिधि के रूप में है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लॉर्ड, कि भगवान का प्रतिनिधि होता है, उनका एक ही काम होता है जो उनको अर्पित किया जाता है वो भगवान तक पहुंचाए, दास दासानुदास। जिस प्रकार हम अर्च्य विग्रह की पूजा करते हैं तो अर्च्य विग्रह की पूजा कोई डायरेक्ट नहीं कर सकता है। कोई सोचेगा कि मैं भगवान को ड्रेसिंग कर रहा हूं या भगवान को भोग लगा रहा हूं कि भगवान को अर्चना प्रदीप कर रहा हूं, तो नहीं, माध्यम है गुरु। इसलिए हमारे गुरु परंपरा रखी जाती है और गुरु परंपरा के बाद जो इसके व्यक्तिगत अपने अपने गुरु है उनका फोटो रखा जाता है और उनको निवेदन किया जाता है। और उनको निवेदन करने के माध्यम से ही हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि हम भगवान की सेवा करने के लायक नहीं है। मैं पढ़ रहा था कि हम केवल एक ड्रामा कर रहे हैं, यहां पर ओरिजिनल भगवान की सेवा अब तक हम नहीं कर रहे। भगवान की सेवा हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि अशुद्ध अवस्था में भगवान की सेवा हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम इस तीन गुणों से बंधे हुए शरीर में ऊपर से छह शत्रु काम क्रोध लोभ मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष ये हमारे हृदय में भरे। तो इस अमल अवस्था में मल अवस्था में अमल व्यक्ति की पूजा अर्चना कैसे हो सकती है? इसीलिए गुरु उस स्थान पर होता है, गुरु शुद्ध होता है, इसलिए वो गुरु प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया जाता है। कोई भी सामान्य व्यक्ति गुरु नहीं बन सकता है, तो गुरु आचार्यों द्वारा भगवान के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो उन गुरु के माध्यम से हम सेवा कर सकते हैं। तो गुरु एक माध्यम, तो गुरु भी ये नहीं सोचता है, जैसे हम व्यास पूजा मनाते हैं, तो व्यास पूजा के समय वह अर्थ ही है कि जो भी भगवान के भक्तों के द्वारा जो भी गुणगान या कोई भी सामग्री धन संबंधी गुरु को व्यास पूजा के समय अर्पित की जाती है, तो गुरु व्यासासन पर बैठ के ये नहीं सोचता है कि ये सब मेरी संतुष्टि के लिए किया जा रहा है, नहीं, वो प्रतिनिधि के रूप में वहां पर बैठकर व्यासासन पर सारे शिष्यों की या भक्तों की जो भी गुणगान सामग्री है वो लेता है, और भगवान के मन में यही सोचता है कि मैं केवल प्रतिनिधि हूं। और जिस प्रकार रूपा उदाहरण देते थे पोस्टमन, जो पोस्टमन होता है वो किसी की धनराशि या किसी का धनराशि आता है टपाल में, वो अपना नहीं समझता, उसका कार्य होता है वहां से लेकर जिस व्यक्ति का है उसके पास पहुंचाया जाए, तो वही गुरु का कार्य है। गुरु मतलब जो भी लेता है उसे भगवान तक पहुंचाता है। तो देवताओं के बारे में यही प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें देवताओं को जो भी अर्पित की जाए वो देवता यदि समझे कि यह हमारा है, तो कभी कभी कुछ देवता होते वो गर्व में आ जाते हैं कि मैं स्वर्ग का अधिपति हूं। जिस प्रकार हम कृष्ण लीला में देखते हैं, जब नंद बाबा इंद्र की पूजा का उत्सव मनाया जा रहा था, तब इंद्र को हर साल जो भी धन धान्य था उसकी पूजा अर्चना करते थे, अन्न भंडार करते थे, तो कृष्ण ने जब देखा कि ये उत्सव कहाँ क्या चल रहा है, तो नंद बाबा से पूछा उन्होंने, जो सभा चल रही थी तो सभा में बैठकर नंद बाबा उपनंद सारे ब्रजवासी मिलकर आगे अभी इंद्र का उत्सव कैसे मनाया जाए इसका प्लानिंग बना रहे थे। तो इंद्र जब कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा कि ये उत्सव क्या चल रहा है, तो बोले लाला ये इंद्र उत्सव मनाया जा रहा है ताकि इंद्र देवता हमें वर्षा देता है, वर्षा के कारण हमारे खेतों में अनाज पैदा होता है, फिर गायों के लिए घास उत्पन्न होती है जिसके द्वारा हमारा उदर निर्वाह होता है, तो इसलिए हम इंद्र की पूजा, क्योंकि वो हमें देता है तो हमें रिटर्न भी करना चाहिए, तो इसलिए हम उसकी पूजा करते हैं। तो कृष्ण ने कहा कोई आवश्यकता नहीं इंद्र को देने की, इंद्र थोड़ी हमें सब प्रदान करता है, हाँ हमें गोवर्धन देता है, देखो गोवर्धन पे इतने सुंदर सुंदर वनस्पतियां फूल पौधे फल, हमारे गाय वहां पर चरती है, इसलिए हमें इंद्र की पूजा करनी चाहिए, सॉरी गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। तो कृष्ण तो बोलने में चतुर है भगवान का, तो अपनी बोली से अपने वक्तव्य से उनका मन मोह लेता है और उन्हें गोवर्धन पूजा की तरफ प्रेरित करते हैं। तो इसी प्रकार फिर गोवर्धन पूजा का उत्सव मनाया जाता है। तो जब यह सूचना इंद्र तक जाती है कि ब्रजवासियों ने आपकी पूजा इस साल बंद कर दी है और वो गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, तो उतने में ये इंद्र क्रोधित हो जाता है, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं इन्हें वर्षा प्रदान करता हूं और मैं वर्षा प्रदान करने के बाद मैं भोगता हूं, मुझे यज्ञ अर्पित करना चाहिए, मुझे अनुष्ठान मेरा अनुष्ठान करना चाहिए। तो इंद्र फिर आदेश देता है सामंतक बादलों को, जो वर्षाकालीन बादल होते हैं, उनको आदेश देता है कि जाओ सारे ब्रजवासियों को अपनी मूसलधार वर्षा से सारा ब्रज पानी में डुबो दो। तो जब ब्रज के ऊपर ये सामंतक बादल अपनी घनघोर वर्षा करते और 7 दिनों तक वर्षा होती है, परंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं कृष्ण गोवर्धन को उठाकर सारे ब्रजवासियों की रक्षा करते हैं। तो जब इंद्र को पता चलता कि 7 दिन तक घनघोर वर्षा के बावजूद भी ब्रजवासियों का एक बाल भी बांका नहीं हो पाया, तो वो समझ जाता है कि जो बालक जिसे बालक समझ रहा था, तो वो इसे बोलते कि संपूर्ण ब्रह्मांड जितने भी जीव है ब्रह्मा से लेकर सब मोहित होते आ ब्रह्म भुवनालो का, तो संपूर्ण जीवात्मा मोहित होते, चाहे ब्रह्मा भी क्यों ना, ब्रह्मा भी मोहित हो गए थे, तो इंद्र भी मोहित हो गया कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और इनके विरुद्ध उन्होंने इतना बड़ा षड्यंत्र या इतना बड़ा कार्य किया सारी ब्रज को तकलीफ देने का, तो जब इंद्र को पता चला तो वो शरणागत आया और भगवान के चरणों में शरणागत हुआ। तो वो स्थान है गोवर्धन में ही, गोविंद कुंड, जहां पर उन्होंने फिर सुरभि गाय के द्वारा भगवान का अभिषेक कराकर अपनी गलतियों की क्षमा मांगी। तो ये देवता है कभी कभी मोह में आ जाते हैं, कभी कभी नहीं हमेशा ही, क्योंकि सारा भौतिक जगत तीन गुणों से बंधा हुआ है, ब्रह्मांड ब्रह्मांड। तो ये देवता लोग इस तरह कभी कभी अपने आप को भी स्वयं भोक्ता समझ लेते हैं। तो इसलिए जो यहाँ के जो कुशद्वीप के वासी है वो जानते थे कि अग्निदेव प्रतिनिधि है, तो वो उन्हें सम्मान देकर भगवान की पूजा कर रहे कि डायरेक्ट स्वयं हम भगवान के पास अपना सेवा नहीं अर्पित कर सकते, तो इसलिए उन्हें अग्निदेव को प्रार्थना करें, हे अग्निदेव आप श्री भगवान के अंश रूप है, कि देवता भगवान के ही द्वारा नियुक्त किए गए, विश्व व्यवस्थापन की योजना के लिए नियुक्त किए गए। तो हमें जब भक्ति मार्ग में हम देखते हैं कि भले हम भक्त जब भक्ति मार्ग में आते हैं तो ऐसा नहीं कि हम भक्ति मार्ग में आ गए तो परिपूर्ण शुद्ध होते हैं, कुछ ना कुछ कामना हमारे में अंदर होती है बहुत सारी। हाँ, उस कामना पूर्ति के लिए भगवान भी कहते हैं कि हमें देवताओं के पास जाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो कभी कभी भक्त मंदिर में आते हैं, अपने पुरानी किसी इष्ट देव होता है उन भौतिक जगत में, जैसे शिव जी, हाँ, पार्वती या इंद्र, सूर्य, इन देवताओं की छुप छुप कर भी कभी उपासना करते हैं। तो भगवान कहते हैं अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारती तीव्रेन भक्ति योगे न एजते पुरुषम परम। यदि हमारे अंदर कुछ अकामी भी हो या कामना भी हो तभी हमें, यदि मोक्ष काम की भी यदि कामना हो तभी हमें परम पुरुष की आराधना करनी चाहिए, एजते परशम पुरुम भक्ति योगे न, तो भक्ति योग से उनकी पूजा, क्योंकि भगवान जानते हैं हमारे हृदय, हाँ, देवताओं से अधिक अच्छा हृदय। तो बोलते हैं कि देवताओं की पूजा करना एक प्रकार से, और देवताओं के उस कामना करना मतलब अपनी ही आत्महत्या करना है, क्योंकि भौतिक भोगों से कभी संतुष्टि नहीं होती है और भौतिक भोगों से कभी हमारा इंद्रिय तृप्ति पूर्ण नहीं हो सकती है। इसलिए देवता लोग उसी तरह होते हैं, जैसे उदाहरण देते हैं कि कोई बच्चा, उसे सर्दी हो गई है और कुछ कुछ पैसे लेकर दुकानदार के पास जाता है और बोलता है मुझे आइसक्रीम, आइसक्रीम की दुकान जाता है आइसक्रीम दीजिए, तो दुकानदार ये नहीं सोचेगा अरे इसके नाक से तो धारा बह रही है और इसे मैं आइसक्रीम दूंगा तो ये आइसक्रीम खा के और भी ज्यादा बीमार पड़ जाएगा, तो वो नहीं सोचता है, उससे मतलब अपना बिजनेस से होता है, व्यापार से, हाँ तुम आइसक्रीम खाओ वहां पर मरो, निमोनिया हो, कुछ हो, मुझे लेना देना, वो अपना बिजनेस बनाना चाहता है। परंतु यदि उसकी माँ के पास यदि वो आइसक्रीम मांगता है तो माँ क्या करती है, आइसक्रीम देने के बजाय, पैसे देने के बजाय, आइसक्रीम देने के बजाय उसे एक गाल में चाटा लगाती है। क्यों? क्योंकि माँ उससे प्रेम करती है और वो जानती है कि यदि मैं इसे आइसक्रीम खिलाऊंगी तो और ये बीमार पड़ेगा और तकलीफ होगा और आइसक्रीम का 20 रुपए देना पड़ेगा, उससे अभी 200 रुपए और डॉक्टर का देना पड़ेगा, वो जानती है, इसलिए वो आइसक्रीम नहीं देती बल्कि गाल में एक चाटा देती है। तो उसी प्रकार भगवान के पूजा करने से या उनकी उन्हें यज्ञ सामग्री या उनकी भक्ति करने से हमारे हृदय में जो आवश्यक है, जो कामना है, लेकिन भगवान वही प्रदान करते हैं जो हमारे लिए आवश्यक है। इसलिए दो तीन चार पांच दिन पहले राधा गोविंद महाराज क्लास दे रहे थे तो बता रहे थे चैतन्य चरितामृत का उदाहरण कि, और श्लोक तो याद नहीं आ रहा है, कि वो कहते हैं कि यदि जीवात्मा अमृत छाड़िया विष मांगे, उस श्लोक अमृत छाड़िया विष मांगे देसो, तो भगवान कहते हैं कि मैं तो विज्ञ हूं, मतलब मैं जानता हूं अच्छा और बुरा क्या है, तो मैं इसे विष नहीं दूंगा अमृत दूंगा, है ना। तो भगवान का यही कार्य है, भगवान भक्तों के शुभचिंतक होते हैं। तो इसलिए हमें भगवान की पूजा अर्चना और भगवान की भक्ति पूरे तरह शरणागत भाव से करनी चाहिए। कुछ भी मन में कामना हो भी तो भगवान पूरी करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, क्योंकि देवताओं को जो देने वाले वो स्वयं भगवान ही है। तो हमें बोलते कि ऐसा खाना चाहिए, ऐसा खाने से क्या हालत, हाँ, तो देवताओं की पूजा करना मतलब ऐसा खाने के समान है, तो सीधा खाइए, जाए भगवान ही हमको सब कुछ देने वाले। तो लेकिन भगवान भी अपने प्रतिनिधियों के द्वारा मतलब गुरु के द्वारा प्रदान करते हैं। तो हमें गुरु को संतुष्ट करने के लिए जीवन यापन करना चाहिए। जैसे श्रील प्रभुपाद, प्रभुपाद ने अपने गुरु के बार दो या तीन बार मुलाकात की, लेकिन तीनों बार, दो बार में उन्हें दो बड़े उपदेश मिले और उसी को अपना जीवन का लक्ष्य माना। जैसे प्रथम मुलाकात में उन्हें पाश्चात्य देश में जाकर कृष्ण भावना के प्रचार का आदेश मिला, और जब वो राधा कुंड पर जब प्रभुपाद मिले तब उन्हें कहा कि आपके पास जब भी धन मिले तो आप पुस्तकों को छपाइए और उसका वितरण करिए। तो ये जीवन का लक्ष्य मानकर प्रभुपाद ने अपने गुरु के समर्पित होकर अपनी क्या बनाया। तो गुरु के प्रति हमें पूर्ण और गुरु के वचनों से, गुरु के वचनों को संतुष्ट करने के लिए ही एक भक्त का जीवन होता है। एक कथा आती है कि किस तरह शिष्य अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए किस हद तक प्रयास करता है। तो रामानुजाचार्य के जीवन की एक कथा है। तो श्री रामानुजाचार्य तो काफी वैष्णव धर्म का बहुत बड़े प्रचारक थे, तो गांव गांव भी प्रचार करते थे। तो एक शिष्य को उन्होंने आदेश दिया कि मैं उस गांव का नाम तो नहीं दिया था वहां, तो मैं इस गांव में जाना चाहता हूं, वहां पर उनका एक आश्रम था, तो जाके सूचना दो कि मैं इस तिथि को आने वाला हूं। तो एक जो उनका शिष्य था सेवक, वो जाकर उस आश्रम में जाके सूचना देता है कि गुरुदेव आने वाले हैं। तो जैसे ही शिष्य लोग सुनते हैं तो वो तुरंत उत्साहित हो जाते हैं और सारा आश्रम साफ सफाई सब क्लीन करने लग जाते कि गुरुदेव आने वाले, गुरुदेव आने वाले। तो वो जो सेवक था जिसने ये संदेश पहुंचाया, वो देखता है मैं संदेश पहुंचा लेकिन मुझे पूछ भी नहीं रहेगी क्या है, बस अपना, क्योंकि वो डर गए कि इतना गंदा आश्रम है, गुरुदेव आने वाले तो गुरुदेव के सामने अच्छा दिखना चाहिए, इसलिए साफ सफाई करके सब रख देते। और फिर वो वहां से जाता है और वहां पर एक गृहस्थ परिवार भी रहता था, तो काफी गरीब था, तो उसके जाकर भी उनको बताते कि इसी स्थिति को गुरुदेव आपके घर आने वाले। तो वो उनको धन्यवाद देते, धन्यवाद आपका, आपने वो संदेश गुरु का हमारे तक पहुंचाया। तो उनको बैठाकर उसके चरण वगैरह धोते हैं, उसको अच्छे से फूल माला पहनाकर उसके चरणों का जो अमृत है वो पान करते, अपने ऊपर छिड़कते हैं और कहते कि आपकी वजह से हमें गुरु की सेवा करने का एक बहुत सुंदर मौका मिला है। तो कहता है गुरु के साथ साथ काफी शिष्य भी आएंगे, तो वो तो उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन उनके जो पति था वो चिंता में पड़ जाता है, उस पत्नी का, कि अभी हमारे पास तो इतना धन नहीं है और गुरु की सेवा करने के लिए मेरे पास तो धन नहीं, अभी क्या करे। बहुत गरीब था, झोपड़ी में रहता था, लेकिन गुरु के प्रति निश्चल भाव से समर्पित था, और उसकी पत्नी ज्यादा उससे ज्यादा समर्पित थी। तो पत्नी के पास रोता है अभी क्या करे, इतना सौभाग्य हमारा उजागर हो रहा है कि स्वयं साक्षात गुरुदेव हमारे घर पर पधार रहे हैं और हमको संतुष्ट नहीं कर पा रहे। तो रोने लगता है, तो पत्नी बोलती है रोइए मत, मैं उसका इंतजाम करती हूं। बोले कैसे? बोले हमारे गांव में एक जो धनी व्यापारी है वो मेरे सौंदर्य पर बहुत आसक्त है, और मेरे सौंदर्य पर आसक्त वो मुझे कई बार प्रपोज दिया कि तुम मेरी कामना को पूरी करो, मैं तुम्हें बहुत धन दूंगा, लेकिन मैंने हमेशा उसे नकारती रही। तो आज मौका है, इस सौंदर्य शरीर को धारण करके फायदा क्या यदि गुरु की सेवा नहीं कर पाए। तो वो श्री सोचती है मैं उसे अपना सुंदर शरीर अर्पण करूंगी और उसे जो धन मिलेगा उसे हम अपने गुरु की और गुरु के शिष्यों की बहुत अच्छे सुंदर ढंग से सेवा करेंगे। तो पति मान जाता है, पति समझता है कि गुरु से बढ़कर और क्या चीज है, ये देह क्या बड़ी चीज है। तो अपनी पत्नी को आज्ञा दे देता है, पत्नी उस व्यापारी के पास जाती है और कहती है, और जैसे ही व्यापारी देखता है अरे ये स्वयं चलकर आ रही है, तो बहुत अस्तुक उत्सुक हो जाता है। तो वो बोलता है क्या हुआ? तो बोले मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूं, तो आप मुझे कुछ धन दे दीजिए। तो बोले ठीक है आओ, नहीं पहले मैं ये धन लेकर अपने गुरु की सेवा करूंगी और सेवा हो जाने के पास मैं अपने पास आपके पास फिर वापस आऊंगी। तो वो लोभी था और कामी भी था, तो बोला ठीक है एक चांस मिल रहा है तो कोई बात नहीं। तो वो जैसे धन दे देता है, वो वापस आती है और अच्छे से गुरुदेव जब पधारते हैं उनका अच्छे से स्वागत करके सेवा करते हैं, अच्छे पकवान बनाते हैं और बहुत संतुष्ट करते गुरुदेव को। तो रामानुजाचार्य देखते हैं कि ये तो बहुत झोपड़ी में रहते हैं, इनके पास धन भी नहीं, वस्त्र भी ठीक से पहनने के लिए, और इतने ऊंचे पकवान ना आज कैसे बनाए। तो वो पूछते कि ये सारा धन आपने कहां से लाया? तो वो गुरुदेव है कहते कि गुरु के सामने असत्य भाषण कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु अवज्ञा सबसे बड़ा अवज्ञा होता है। तो उन्होंने बता दिया कि ऐसे ऐसी घटना, ऐसा ऐसा कार्य हुआ है कि धनी व्यापारी को। तो रामानुजाचार्य चकित होते हैं, मेरी सेवा करने के लिए इन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। तो वो कहते हैं, तो रामानुजाचार्य जो प्रसाद जो खा रहे थे उन्होंने क्या किया, उस स्त्री को कहा, उनके शिष्या को, कि ये जो प्रसाद लो और उन जो व्यापारी धनी उसको जाकर खिला दो। तो वो शिष्या लेती हो प्रसाद और उस धनी व्यापारी के पास जाती है तो धनी व्यापारी उसको देखकर आज मेरी कामना तृप्त होगी, इस गंदी भावना से आसक्त होकर उस स्त्री को आलिंगन करने जाता, आलिंगन करना चाहता है, तब तो कहती है पहले आप ये प्रसाद ग्रहण करिए, इसके बाद मेरे साथ उपभोग करिए। तो जैसे वो रामानुचार्य का महाप्रसाद खाता है और जैसे ही खाता है तुरंत उसकी चेतना चेंज हो जाती है और वो अपने आप में आत्मग्लानी करने लगता है और उस स्त्री के चरणों में दंडवत प्रणाम करता है और कहता है कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके प्रति बहुत गंदा भाव रखा, कामी भाव रखा। तो यहां पर इस कथा में कि गुरु को प्रसन्न करने से कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो या कुछ भी आपदा हो, सब दूर होती है। तो गुरु ही हमारे जीवन का वास्तविक भक्ति जीवन का केंद्र बिंदु है। भक्ति रसामृत सिंधुभूमि 64 अंगों में पहला अंग रूप गोस्वामी यही बताते हैं, गुरु चरणाश्रय, गुरु पदाश्रय। क्योंकि बिना प्रपंच बोलते ना, इनिशिएशन इज द बिगिनिंग, है ना, दीक्षा यह शुरुआत है भक्ति की, ना ही नॉट कंप्लीट, पूर्णता नहीं है। तो बिना गुरु के शरणागत हुए भगवान तक पहुंचा ही नहीं जाता। कई सारा पूरा भागवत पुराण या कई शास्त्र भरे गुरु के व्याख्यानों से। तो महाभारत में भी एक व्याख्यान आता है कि उसने तीन भाई थे, तीन शिष्य थे उनके, एक अरणी, दो का नाम मुझे याद नहीं, उसमें से एक जो था एक गुरु के आज्ञा पालक बहुत अच्छे तरह से किया, जो अरणी था उसने अपना जीवन, अपना शरीर भी भरी बारिश में खेत में मेड़ लगाने के लिए झोंक दिया था, इसलिए उसको गुरु का आशीर्वाद मिला कि तुम्हें सारा वेदों का ज्ञान प्रकट होगा। लेकिन एक जो शिष्य था वो काफी स्वार्थी था, यानी खाने में बहुत लालची था। तो वो जब भी माधुकरी करने जाता वो माधुरी करता और खुद माधुकरी करके पहले खुद खा जाता फिर गुरु को लेकर आता। तो गुरु देखे कि ये माधुकरी करके आते, मैं तो कभी कहता नहीं इसे खाओ, लेकिन ये धष्ट पुष्ट कैसे लग रहा है। तो गुरु पूछते तुम खाते कहां से हो, गया चराने जाता था और माधुकरी भी करता था। तो गुरु ने उनको बताया कि जो भी भिक्षा मिलती हो वो संपूर्ण पहले गुरु को अर्पण करना चाहिए, उसके बाद यदि गुरु कहे तो खाना चाहिए। तो गुरु की आज्ञा पाकर ठीक है गुरुदेव, तो वो भिक्षा मांग कर लेके आता था, गुरु को समर्पित कर जाता, फिर गाय चराने जाता था और क्या करता था, वो गाय का दूध निकालकर खुद पी लेता था। तो इस बार हष्टपुष्ट, तो गुरु ने कहा कि जो भी कुछ करो पहले गुरु को अर्पण करो। तो एक दिन वो गुरु को अर्पण करते, उसको बहुत भूख लगा, जंगल में गाय चराते, उसने कुछ वनस्पति थी वो खा ली जिसके कारण उसे विष बाधा होगी और उसकी आंखें चली गई और वो कुएं में गिर गया। तो प्रार्थना करने लगा, तो वहां पर उसे देवता प्रकट हुए उसकी परीक्षा लेने के लिए, अश्विनी कुमार। तो अश्विनी कुमार ने कहा कि ये लो भोजन, तुम कितने दिनों से भूखे होंगे, खा लो। बोले नहीं नहीं, मैं गुरु को अर्पित किए बिना नहीं खाऊंगा। तो बोले तुम कितने दिन से भूखे, खा लो। तो नहीं बोलता है, तो देवता लोग प्रसन्न होते हैं कि आपकी गुरु भक्ति पर हम प्रसन्न हुए और उसे कृपा करते हैं और उसकी दोनों आंखें उस शिष्य की वापस आ जाती है। और फिर उस दिन से रहता है कि गुरु को अर्पित किए बिना या गुरु को बिना समर्पित किए मैं कुछ भी नहीं करूंगा। तो महाभारत की कथा है। तो इस प्रकार हमें इस श्लोक से यही संदेश या तात्पर्य से यही प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमें भक्ति जीवन के लिए और कर्मियों के लिए भी कि देवताओं को संतुष्ट करने के बजाय साक्षात परम पुरुषोत्तम भगवान को संतुष्ट करें, जिससे हमें हमारी कामनाओं को भी पूर्ति होगी। और प्रभुपाद तात्पर्य में इस चक्रवर्ती विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के श्लोकों के द्वारा जो हम रोज गाते हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, क्योंकि हमारे जीवन की जो भी ताप है, कामना है, वो गुरु के द्वारा ही संतुष्ट होने वाली है। तो हमें अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए अपना हर प्रयास होना चाहिए। हरे कृष्णा, समय हो गया है, यहाँ पर समाप्त देता हूँ। कुछ टिप्पणी हो तो आप कर सकते हैं।
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, बहुत अच्छा प्रवचन दिए, धन्यवाद। जैसे आप बोले कि हमको कृष्ण को पूजा करना चाहिए, कोई देवा देवी की इनकी पूजा नहीं करना चाहिए, और इसी में बताया गया कि वो सही देवा देवी को पूजा करने से कम बुद्धिमान व्यक्ति है। और कभी कि हम देख सकते जैसे वैष्णव यथा शंभू, शिव जी एक परम वैष्णव है। शिव जी की जैसे हमारे गोपी लोग कात्यायनी माता की पूजा किया, और यहाँ पे माधवेंद्रपुरी एक श्लोक में बताते हैं कि हम मैं बिल्कुल इन लोगों को पूजा नहीं करूंगा, मैं ऐसे ये जो संध्या भो संध्या बंधन
अर्पण सत्या,
हाँ मैं बिल्कुल मैं केशव को पकड़ के रखा हूं, मैं उन लोगों को बिल्कुल देखूंगा नहीं। उसी और कभी कभी हम लोग देखते हैं भक्त लोग भी, हाँ थोड़ा उधर क्यों डिटरमाइंड होना चाहिए कृष्ण के ऊपर, अगर कृष्ण को डिटरमाइंड नहीं है तो उनको बोलते ये थोड़ा मदद करो ये मदद करो। यहाँ पे ये लोग भी पूजा किए थे और भक्त लोग भी पूजा कर सकते, कभी कभी भक्त लोग चाहते कि हम विष्णु इन कृष्ण की कृपा करने के लिए इनकी कृपा मांगते हैं, क्योंकि भक्त बोले क्या है हम डायरेक्ट कृष्ण ये किसको मैं पसंद नहीं करता हूँ। थोड़ा नेगेटिव पॉजिटिव बताइए थोड़ा।
तो प्रभुपाद के पास एक भक्त आया था, उसने कहा प्रभुपाद मैं गणपति की पूजा करना चाहता हूँ। फॉरेन का था, उसने गणपति की महिमा भारत में देखी, गणपति उत्सव आता है महाराष्ट्र में विशेषकर, तो वो उत्साहित हुआ कि इतना अच्छा तरह से गणपति का हुआ उत्सव होता है 10 दिन। तो बोला मैं गणपति की पूजा करना था। प्रभुपाद बोले तुम पहले $10,00,000 मेरे पास लेके आओ, तब जाके पूजा करो। तो प्रभुपाद ने भी हमें बताया कि हमें देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। और रिसेंटली मैंने एक भक्त से अभी एक उदाहरण सुना जो हमारे इस्कॉन के भक्त का है, कि देवता क्योंकि भगवान तो उसके हृदय में, और देवताओं को जो भी शक्ति है वो तो भगवान के द्वारा आती है। तो एक भक्त है इस्कॉन का ही है, तो उसने विवाह किया भक्त से विवाह किया और उसे संतान नहीं हो रही थी। तो मैं सुनकर थोड़ा अच्छा लगा कि गुरु ने क्या किया, उनके गुरु ने उनको महादेव के पास, कामेश्वर महादेव के पास लेके गए। कृष्ण जानता है क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, भक्तों को क्या देना चाहिए, भगवान तो सर्वज्ञ है, सब जानते हैं। तो उन्होंने क्या, गुरु ने उनको जाकर कामेश्वर महादेव से पुत्र का वरदान दिलाया और पुत्र हुआ भी 5-6 साल के बाद, हो नहीं रहा था लेकिन वो पूजा करने से हुआ। लेकिन क्या हुआ, उसके बाद दोनों में संबंध विच्छेद हो गए, दोनों पति पत्नी संबंध विच्छेद घटस्फोट हो गया। तो हमें जो भी कुछ चाहिए देवताओं के पास नहीं जाना चाहिए। देवता मैंने बोला ना कि देवता उस दुकानदार की तरह है, वो उसके भला क्या है वो नहीं जानते, उसमें किसका भला है वो नहीं जानते, बस वो अपना व्यापार बनाना है। तो देवताओं के साथ जो भी कुछ होता है वो व्यापार होता है। तो हमें हर जो भी कुछ मांगना है, भौतिक क्यों ना मांगना हो, कृष्ण के पास मांगना चाहिए, और कृष्ण सर्वज्ञ होने के कारण सब कुछ देने के लिए तैयार है, तो हम क्यों देवताओं के शरण में जाए। सारे को भगवान बोलते हैं कि मैं सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों का ईश्वर मैं स्वयं हूं, मैं भोगता हूं, तो हमें दूसरों की तरफ जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो कोई जरूरत नहीं। जब जान जाने के बाद तो उसे हृतक ज्ञान कहा गया है, अल्प ज्ञानी लोग कहा गया है। हृतक ज्ञान मतलब जो अल्प ज्ञानी है, ज्ञानी नहीं उनको, वैसे लोग जाते हैं। और भक्त तो ज्ञानी है, रोज भागवतम क्लास सुनते हैं, प्रभुपाद की बुक्स पढ़ते हैं, और तभी देवताओं की शरण में जाएंगे तो भगवान कितनी बड़े। तो इस इन घटना में भगवान एक चपराक दिया, भगवान नहीं देना चाहते थे संतान, 5-6 साल हो गया मांग रहे थे नहीं दे रहे थे, तो देवताओं के शरण में जाकर हुआ क्या, फायदा तो हुआ नहीं, उलट विच्छेद हो गया। तो नहीं जाना चाहिए। कृष्ण जो कुछ करते हमारे लिए, चाहे वो बुरा भी करे हमारे साथ अच्छा भी करे, सब कुछ अच्छा ही है। इसीलिए जो भी हो अकामो स्वर्गम, भगवान के ही शरण में जाओ, देवताओं के शरण में जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हरे कृष्ण।
जो गोपियां हैं वो कात्यायनी की देवी की पूजा करते हैं, हाँ। और ऐसी अपेक्षा करती है कि कृष्ण हमारा स्वामी बने,
हाँ, लेकिन अपेक्षा उनकी अच्छी थी ना, कृष्ण को पाने की थी, हाँ। इसीलिए प्रभुपाद बोलते हैं देवताओं के पास जाओ, उनको प्रणाम करो और उनसे वरदान मांगो कि हमें कृष्ण भक्ति मिले। आपकी कामना कौन सी, किस कामना से जा रहे हैं, वो सर्वोत्तम है। तो वहां पर कात्यायनी देवी की गोपियां किस लिए गई, तो पति उनको तो उमा देवी से भी, कात्यायनी से भी मिल सकता सुंदर पति, लेकिन कृष्ण नहीं दे सकते ना। उमा देवी कात्यायनी देवी कृष्ण को नहीं दे सकती है, हाँ आशीर्वाद दे सकती है, हाँ तुम्हें पति मिले, क्योंकि कृष्ण को कौन दे सकता है, स्वयं कृष्ण यदि देना चाहे तो कृष्ण दे सकते हैं, नहीं तो किसी के हाथ में थोड़े, गुरु और कृष्ण ही स्वयं दे सकते हैं। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता में, गुरु को केवल कृष्ण को केवल स्वयं कृष्ण दे सकते हैं, नहीं तो गुरु दे सकता है, देवी देवता नहीं दे सकते। तो इसलिए क्या कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हैं, वो नहीं बोल रहे कि हमको, तो प्रार्थना करिए कृष्ण हमें दे दो, कृष्ण पति रूप में। उन्होंने शिव जी को पति या इस अन्य को पति नहीं मांगा, उन्होंने वो जानती है ये कौन भोक्ता है, कौन ईश्वर है और कौन पति है, पति तो एक ही है।
और गोपियां तो राधा रानी की एक्सपांशन ही है ना, हाँ। कुछ सामान्य जीव नहीं है ना
अभी, हाँ
गोपियां जो हैं वो राधा रानी की स्वरूप स्थिति ही है ना, वो कुछ सामान्य जीव जीवात्मा नहीं है ना,
हाँ। तो ये भगवान की लीला, भगवान की लीला है, गोपियां वो भी लीला के संयोगी करते हैं। तो मैं तो इतना कुछ नहीं समझ रहा हूं, जान सकता हूं उस लीला के बारे में, लेकिन एक ही है कि वहां पर उनका उद्देश्य सही है। यदि हमारा उद्देश्य है सही, देवता के पास भी जाते हैं तो कोई उसमें त्रुटि नहीं है, लेकिन उद्देश्य यदि सही नहीं है तो वो गलत है। भौतिक कामना लेकर जाते हैं तो यह गलत है। कृष्ण को पाना है भौतिक कामना नहीं है, कृष्ण को पति पाना। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण प्रभु। हरि बोल।
हाँ
प्रभु जी, जैसा क्या हमें कुछ शरीर के लिए सुविधा चाहिए, जैसा क्या गमछा चाहिए या कपड़ा चाहिए या डॉक्टर के पास जाना है, ये करना है, तो ऐसा इसी स्थिति में हमें प्रेसिडेंट के पास जाने की क्या जरूरत है? जब कोई टेंपल कमांडर हमें सुविधा पूरी कर सकता है तो उसी के पास जाना चाहिए। सुविधा तो आती है वहां से, लेकिन हमें तो जाना है जिससे जिस चीज मिले उसके पास जाना चाहिए ना। तो भगवान के पास जाने की जरूरत क्या है? जब यह हमें वर्षा की जरूरत है तो वरुण देव के पास जाना चाहिए।
तो प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट भगवान का प्रतिनिधि है ना।
हाँ
तो प्रतिनिधि नियुक्त करके उनके हाथ में वो सामग्री दी है, उनके हाथ में वो शक्ति दी है, तो वहां से ही हमें लेना चाहिए। हम यदि दूसरी जगह लाते हैं तो हम अविश्वास दर्शाते हैं प्रेसिडेंट के प्रति, और प्रेसिडेंट के प्रति अविश्वास दर्शाना मतलब भगवान के प्रति अविश्वास दर्शाना।
नहीं, लेकिन छोटी सी चीज के लिए प्रेसिडेंट को या भगवान को तकलीफ देना ठीक नहीं है ना। जब टेम्पल कमांडर से हमारा काम पूरा होता है तो भगवान को क्यों तकलीफ देना है? भाई आका हमें लटका दे दो या हमें गमछा दे दो या हमें कपड़ा दे दो या साबुन सोप दे दो।
पत्नी यदि पति को समर्पित है तो वो दूसरे के पास थोड़ी जाएगी, उसकी जीवन आवश्यक वस्तुओं को तो उसी के पास मांगना पड़ेगा ना। तो हमारा जो कुछ हमने जीवन समर्पित किया है प्रभुपाद के लिए, ईश्वान के लिए, मंदिर के लिए, तो हमारा जो भी कुछ है जीवन जीने का, वो साधन उनका अधिकार है हमको देना, तो हमें उनसे पास ही मांगना चाहिए, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है।
तो प्रेसिडेंट के लिए ये छोटी छोटी चीज के लिए नहीं जाना चाहिए ना।
तो उन्होंने टेम्पल कमांडर नियुक्त किया है ना सब देने के लिए।
हाँ तो भगवान ने भी ऐसे ये देवता लोग नियुक्त किए हैं ना। लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी के पास जाइए, बच्चा चाहिए तो उसके पास जाइए।
तो देवताओं के पास भी शक्ति आती है कृष्ण से आती है। तो हमें अग्निदेव के या कुशदीप के वासी वो क्या कर रहे हैं? वो बोल रहे कि डायरेक्ट देवताओं की पूजा मत करो, और कुशदीप के वासी कह रहे हैं कि देवताओं अग्निदेव को कह रहे कि आप ये हमारा लीजिए और भगवान को समर्पित कीजिए। वो अज्ञानता में ये नहीं करे कि आपको ही संतुष्ट करे। तो कुछ अज्ञानी लोग होते हैं कि समझते कि देवता ही संपूर्ण है, भगवान के समान है, इसलिए दस नाम अपराधों में एक अपराध आता है। शिव ब्रह्मा आदि देव को भगवान नाम के समान है तो उनसे स्वतंत्र समझना यह अपराध है। तो हम अपराध क्यों करें? देवता के पास जाकर अपराध होगा ना, कि हम जानते कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, तो हम उसे सर्व करने के बजाय और उसे मांगने के बजाय हम देवता के पास जाएंगे तो अपराधी बनेंगे। तो अपराध नहीं करना है ना हमें, हम तो भक्त है ना।
ठीक
है, आप आज जो भी श्रद्धा रखना चाहता है, जाना चाहता है, वो तो भगवान बोलते मैं ही उसकी श्रद्धा को स्थापित करता हूं। तो अल्टीमेटली भगवान यहां से ना वहां से वही कर रहे कि कृष्ण ही सब कुछ कर रहे, देवताओं के द्वारा भी जो भी करे कृष्ण ही कर रहे हैं। इसलिए हम डायरेक्ट तो एक कथा आती है, लेकिन टाइम नहीं है, वो कथा नहीं कर दे।
उनका प्रश्न आप समझा नहीं बराबर, उनका अलग तरीके का प्रश्न है। उन्होंने पूछ रहा है गमछा चाहिए तो टेम्पल कमांडर दे देते हैं, गमछा के लिए क्यों प्रेसिडेंट के पास जाएगा? तो गमछा चाहिए तो ठीक है, मटका धोती सिल्क धोती चाहिए तो कम से कम तो जाना पड़ेगा ना प्रेसिडेंट के पास। छोटा मोटा चीज जो मिलता है अपने आप से, बारिश गिरता है ठीक है, बारिश नहीं आता तो कीर्तन करके तो गिरेगा ना। तो इसके लिए आपको मटका धोती चाहिए तो टेम्पल कमांडर नहीं दे पाएगा, बड़ा बड़ा लोन चाहिए तो अंधेरे तक देगा, थोड़ा बड़ा लोन चाहिए तो जाना पड़ता है ना, बड़ा बड़ा चीज का बात चल रही है। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण। समय हो गया है, जो भी प्रश्न है बाद में पूछ लीजिए, टेम्पल कमांडर का आदेश आया, समाप्त करिए। हरे कृष्ण।